नियमित रविवार के प्रतिभोज उत्सव में आए हुए सभी भक्तों का, आजीवन सदस्यों का, दर्शनार्थियों का, धर्म प्रेमियों का, कृष्ण कथा अमृत के रसिक पान करने वाले भक्तों का राधा गिरधारी मंदिर में हार्दिक स्वागत है। प्रभुपाद महाराज श्रीमद् भागवतम के एक तात्पर्य में लिखते हैं कि जीव एक बार जो इस भवसागर में प्रविष्ट हो जाता है तो उसको इससे बाहर निकलना या इसको पार करना बहुत कठिन हो जाता है। अगर कोई जीव इस संसार सागर को पार करना चाहता है उसे भगवान के भक्तों के संग की बहुत आवश्यकता है। यहां तक कि जो पार करना चाहते हैं उनके लिए भी और जो इस साधना में लगे हुए हैं उनके लिए भी, क्योंकि भक्ति का दीपक प्रज्वलित करना मुश्किल है, ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करना मुश्किल है। अगर प्रज्वलित हो जाता है, भक्ति प्रारंभ हो जाती है, ज्ञान भी हो जाता है, तो उस दीपक को, ज्ञान रूपी दीपक को, भक्ति रूपी दीपक को इस संसार के तेज बहने वाली हवाओं से बचा के रखना, प्रज्वलित रखना, ये और भी कठिन है। तो इसके लिए एकमात्र उपाय है कि भगवान के भक्त का संग में रहा जाए, भगवान के कथा कीर्तन में जितना ज्यादा हो भाग लिया जाए। तो इससे व्यक्ति इस दुर्लभ संसार सागर को भी पार कर सकता है और अपने ज्ञान रूपी दीपक को भी प्रज्वलित किए रख सकता है। और इसके लिए प्रभुपाद ने कई विशेष सुविधाएं हमको प्रदान की है और उसमें ही एक है रविवार का प्रतिभोज उत्सव। तो इस प्रकार जो भी भक्त इसमें भाग लेने के लिए उपस्थित हुए हैं उनका हम स्वागत करते हैं। और विशेषकर आज जैसा आप लोग सब जानते हैं कि प्रवचन जब पूरा हो जाता है तो महाप्रसादे दौड़ लगाते हैं और जो अनाउंस होता है उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। तो आज हमको कहा गया कि आप प्रवचन के पहले ही अनाउंस कर दो, जो विशेष अनाउंसमेंट है, बाकी जो रेगुलर अनाउंसमेंट होता है वो तो बाद में ही होगा। तो विशेष अनाउंसमेंट है, आप सभी जानते हैं कि जगन्नाथ जी का रथ यात्रा उत्सव आ रहा है और यहाँ जो हमारे मंदिर में यह रथ यात्रा उत्सव होता है वो उस विशेष तिथि को ही होता है जिस दिन जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होता है आषाढ़ी बीज, उसी दिन यहाँ भी यह रथ यात्रा होता है। तो जो लोग वहाँ जगन्नाथपुरी नहीं जा पाते हैं वे यहाँ रथ यात्रा उत्सव भाग लेकर वही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको पता होगा, हमने सुना है कि ये जो हमारे छोटे छोटे विग्रह हैं जगन्नाथ जी के, ये छोटे विग्रह जगन्नाथपुरी के विग्रहों से ही बने हुए, दारूक से बने हुए हैं। जो पुरी में जगन्नाथ जी का विग्रह बनता है उसी पुरी से वह दारूक मतलब लकड़ी को लाया गया और उसी से इस विग्रहों को बनाया गया। तो इससे भी हमको ये विशेष कृपा प्राप्त है। तो यह रथ यात्रा उत्सव आते महीने की 10 तारीख को, 10 जुलाई है, सबको ये इनविटेशन कार्ड विशेषकर लाइफ मेंबर जो हैं उनको भेजा गया है। लेकिन अगर कुछ भक्त चाहते हैं कि हमें भी ये कार्ड दिया जाए कि हम हमारे संबंधियों को या मित्रों को आमंत्रित कर सकें और उनको भी डोनेशन के लिए उत्साहित कर सकें तो वे यहाँ मंदिर से ये कार्ड ले जा सकते हैं। तो इसमें क्या क्या अनाउंसमेंट है ये सुन लीजिए। 10 तारीख को रथ यात्रा के पहले भी रथ यात्रा के निमित्त कई उत्सव होते हैं, उसमें सबसे पहला उत्सव आएगा अभी स्नान यात्रा है। तो स्नान यात्रा 23 तारीख को आते रविवार को स्नान यात्रा है। स्नान यात्रा अर्थात भगवान जगन्नाथ जी का जन्मदिन है और जगन्नाथ जी का जो अभिषेक किया जाता है जल से उसी को हम स्नान यात्रा के रूप में मनाते हैं। तो ये स्नान यात्रा 23 तारीख को है और उसके बाद 15 दिन तक जगन्नाथ जी का दर्शन बंद रहता है, क्योंकि जगन्नाथ जी को इतना स्नान कराया जाता है कि वो बीमार हो जाते हैं, उनको सर्दी लग जाता है तो उनका ट्रीटमेंट चलता है, तो वो किसी को दर्शन नहीं देते हैं। कृष्ण अद्भुत कर्मणा, आज ही हम पढ़ रहे थे इस श्लोक के आगे, कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो अद्भुत हैं, अद्भुत अद्भुत कर्म करते हैं, अद्भुत अद्भुत लीलाएं करते हैं। तो 23 तारीख को स्नान यात्रा है और रविवार है इसलिए आप सब उसमें भाग लेंगे ही। अब उसके बाद 15 दिन तक जो दर्शन बंद रहता है तो सभी भक्तों के जो नेत्र हैं वे मायूस हो जाते हैं जगन्नाथ जी का दर्शन न मिलने के कारण। तो 15 दिन बाद जो दर्शन खुलता है उसको नेत्रो उत्सव कहते हैं, और नेत्रो उत्सव के बाद उस दिन नेत्रो उत्सव के दिन विशेष दर्शन होता है गजवेश में, तो वो दर्शन आप प्राप्त कीजिए। नेत्रो उत्सव का यहाँ पर लिखा नहीं गया है डेट, और नेत्रो उत्सव के बाद जो रविवार है 7 तारीख, कौन से तारीख को रविवार पड़ता है, उस दिन गुंडीचा मंदिर मार्जन है, तो वो अगले रविवार को आपको नेत्रो उत्सव स्नान यात्रा के दिन सब बताया जाएगा, नेत्रो उत्सव कब है और गुंडीचा मंदिर मार्जन कब है। और उसके बाद 10 तारीख को रथ यात्रा है। तो रथ यात्रा में भक्तों का बहुत सेवा रहता है, इतना बड़ा उत्सव होता है, लाखों इस उत्सव का लाभ उठाते हैं, सबको प्रसाद दिया जाता है, तो इसके लिए सभी भक्तों को इसमें सेवा का भाग लेना होता है। तो रथ यात्रा के दिन विशेष सेवा रहता है भगवान का आरती सेवा। तो जो भी भक्त आरती सेवा करना चाहते हैं या कराना चाहते हैं तो वे यहाँ जो बाहर बैठे हैं भक्त हमारे उनसे फॉर्म भी ले सकते हैं और उसके बारे में विशेष जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं चांद गोपी प्रभु से या जो बाहर टेबल पर कृष्ण शिष्य प्रभु बैठते हैं उनसे, और आरती का सेवा ले सकते हैं या आरती का सेवा अन्यों से भी करा सकते हैं। तो एक है आरती सेवा, और उसके बाद एक सेवा है जो दीक्षित भक्तों के लिए है, जो प्रतिवर्ष दीक्षित भक्त ये सेवा करते हैं जगन्नाथ जी से। जो भी अपने घर में जितने भी दीक्षित हैं ये सब दीक्षित भक्त रथ यात्रा में प्रतिवर्ष अपनी सेवा भेंट अर्पण करते हैं और उसमें मिनिमम 1,000 रुपया का सेवा होता है, अगर उससे ज़्यादा भी करना चाहें तो कर सकते हैं लेकिन मिनिमम 1,000 है। जो भी राधा गिरधारी मंदिर से जुड़कर दीक्षा लिए हैं उनके लिए ये विशेष सेवा रहती है जगन्नाथ जी की। तो सभी दीक्षित भक्तों के चरणों में भी विशेषकर निवेदन है कि वे प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी इस सेवा को लें, और जो भक्त उपस्थित नहीं हैं और हमारे पहचान में हैं उनको भी यह सूचना दे दें कि रथ यात्रा में आपने दीक्षा राधा गिरधारी मंदिर से लिया है तो रथ यात्रा में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी आप अपनी सेवा अर्पण कीजिए, भेंट अर्पण कीजिए और जगन्नाथ जी का कृपा प्राप्त कीजिए। तो इस प्रकार ये दो विशेष सेवाएं हैं रथ यात्रा में, दीक्षित भक्तों का सेवा और जो भी आरती लेना चाहते हैं उसका सेवा, ये दो सेवा विशेष कर है। और उसके बाद जो भी दूसरी सेवाएं हैं जैसे गुंडीचा मंदिर मार्जन करना, रथ यात्रा में भाग लेना, ये तो सभी अपने अपने काउंसलरों को सौंप दी गई है। तो दूसरी सेवाओं के लिए सभी भक्त अपने अपने काउंसलिंग में काउंसलरों से सूचना प्राप्त कर सकते हैं, उस सेवा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन विशेष जो ये दो सेवाएं हैं इसके बारे में आपको हमने विस्तार बताया, एक दीक्षित भक्तों की सेवा और दूसरा आरती सेवा, और तीसरी है जो भी भक्त ये जो आजीवन सदस्य नहीं है उनको ये इनविटेशन कार्ड और डोनेशन के लिए उत्साहित करना चाहते हैं उनके लिए ये कार्ड उपलब्ध है, आप ले जा सकते हैं। विशेषकर चांद भूमि प्रभु, हाँ प्रभु जी कह रहे हैं कि जो दीक्षा लेने के इच्छुक हैं वेटिंग में हैं वे भी ये सेवा का लाभ ले सकते हैं, हैं? जो 1000 का भेंट सेवा होता है जगन्नाथ जी के चरणों में इसका लाभ वे भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है लेकिन दीक्षित भक्तों के लिए अनिवार्य है। ठीक है, तो आइए अब इस रथ यात्रा की सेवा के बाद आज विशेष श्लोक पर चर्चा करते हैं। इस श्लोक का बहुत ही बड़ा महत्व है क्योंकि ये जो श्लोक है ये एक महाभागवत के द्वारा उच्चारित श्लोक है। महाभागवत ही नहीं, 12 महाजनों में जो एक महाजन है भगवान कृष्ण के जो अनन्य भक्त हैं उनके ये बहुत ही श्रेष्ठ उद्गार हैं जिनको भागवतम में स्थान मिला है। बहुत सुंदर श्लोक है, तो आइए इस श्लोक पर आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो इस श्लोक पर चर्चा करने के पहले श्लोक का आवृत्ति करते हैं, पहले शब्दों को। सह देव देव भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावत् इदम् हिनोमिहि अहम् प्रसन्ना हास अरुणलोचना उल्लसतः मुखाम्बुजः ज्ञानपथः चतुर्भुजः। सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षताम् सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्ना सारुण लोचनोल्लस मुखाम्बुजो ध्यान पथ चतुर्भुजा। सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं यनोम्यहम् प्रसन्ना सारुण लोचनोल्लसा न मुखाम्बुजो ध्यान पथश्च चतुर्भुजा। सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं विनोम्यहम् प्रसन्न सारुण लोचनोल्लास नमुखाम्बुजो ध्यान पथश्च चतुर्भुजा एक प्रभु जी और एक माता जी। कोई भी एक प्रभु जी विचार आवृत्ति कीजिए। कोई लिखा हुआ है श्लोक बड़ा प्रसिद्ध। एक प्रभु जी कोई भी इसका आवृत्ति कीजिए। सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यादिदं हिनोम्यहम्। प्रसन्ना सारुण लोचनोल्लसा मुखाम्बुजो ध्यान पथश्च चतुर्भुजा। माताजी सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम्। प्रसन्नः सारुण लोचनोल्लसः मुखाम्बुजो यान् पथश्चतुर्भुजा। सा वे देव देवो देवताओं के भी प्रभुओं में श्रेष्ठ भगवान भगवान प्रतीक्षताम कृपया प्रतीक्षा करें। कलेवरम शरीर को यावत् जब तक इदम् इस हिनोमि त्याग दूं अहम् मैं प्रसन्नः प्रसन्न हास हसते हुए अरुण लोचना प्रातकालीन सूर्य के समान लाल नेत्र उल्लसताः सुंदर ढंग से सजाए मुख अम्बुजा कमल के समान उनका मुख ध्यान पथ मेरे ध्यान के मार्ग में चतुर्भुजा चार भुजाओं वाले नारायण भीष्म देव द्वारा आराध्य देव या उनके इष्ट देव। इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणा अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद महाराज। चतुर्भुज रूप उगते सूर्य की भांति अरुण नेत्रों तथा सुंदर रीति से सजाए मुस्कुराए कमल मुख वाले मेरे भगवान, आप उस क्षण तक यहीं मेरी प्रतीक्षा करें जब तक मैं अपना भौतिक शरीर छोड़ ना दूं। तात्पर्य भीष्म देव अच्छी तरह जानते थे कि भगवान कृष्ण आदि नारायण हैं। उनके आराध्य देव चतुर्भुज नारायण थे, लेकिन वे यह जानते थे कि ये चतुर्भुज नारायण भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंश हैं। परोक्ष रूप से उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि भगवान श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज रूप नारायण रूप में प्रकट हों। वैष्णव सदा ही अपने आचरण से विनीत होता है और यदि वह शत प्रतिशत निश्चित था कि शरीर त्याग कर भीष्मदेव वैकुंठ लोक जा रहे हैं, तो भी विनीत वैष्णव के रूप में उन्होंने भगवान की सुंदर मुखाकृति देखनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कहां इस शरीर को छोड़ने के बाद कहीं इस शरीर को छोड़ने के बाद दूसरे जन्म में भगवान का दर्शन साक्षात न भी हो पाए। वैष्णव को कभी गर्व नहीं होता, यद्यपि भगवान अपने भक्तों को अपने धाम में प्रवेश करने की गारंटी देते हैं। यहां पर भीष्मदेव कहते हैं कि जब तक मैं अपना शरीर त्याग ना दूं, इसका अर्थ है कि ये महान सेनापति अपनी इच्छा से शरीर का त्याग करेंगे, प्रकृति द्वारा बाध्य होकर नहीं। वे इतने शक्तिशाली थे कि जब तक चाहते वे अपने शरीर में बने रह सकते थे। उन्हें यह वर अपने पिता से प्राप्त हुआ था। उनकी इच्छा थी कि भगवान अपने चतुर्भुज नारायण रूप में उनके समक्ष रहें, जिससे वे उनका ध्यान कर सकें और समाधि दशा को प्राप्त हो लें। तब उनका मन भगवान का चिंतन करके पवित्र हो जाए, फिर वे कहीं भी जाएं उनको यह परवाह नहीं रहेगी। एक शुद्ध भक्त भगवत धाम वापस जाने के लिए कभी भी चिंतित नहीं रहता है, वह तो भगवान की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है। यदि भगवान उसे नरक भी भेजना चाहें तो वह समान रूप से संतुष्ट होता है। शुद्ध भक्त की तो एक ही इच्छा रहती है कि वह सदा भगवान के चरण कमलों का चिंतन करता रहे। भीष्म देव की इतनी ही इच्छा थी कि उनका मन भगवान के चिंतन में लीन रहे और वह इसी तरह चल बसे। शुद्ध भक्त की यह सर्वोच्च अभिलाषा रहती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरं मिलितं येन नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्ते सरस्वती गौरवाणीकचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्ये वाञ्छाकल्पतरुभ्य पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण। तो पितामह भीष्म शरीर त्याग करने की तैयारी में हैं और जिस समय वे अपना देह त्याग करना चाह रहे थे उस समय वे बाण सैया पर पड़े हुए थे, ऐसा बताया गया है कि 54 दिन तक पितामह भीष्म बाण सैया पर रहे और 400 वर्ष तक वे इस धराधाम में प्रकट रहे। जब महाभारत का युद्ध पूरा हो गया और उसके बाद महाराज युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राज्य सिंहासन प्राप्त था, लेकिन वे शोक में डूबे हुए थे। युद्ध के पहले अर्जुन शोक में थे और युद्ध के बाद युधिष्ठिर शोक में डूब गए। वे सोच रहे थे कि इस हस्तिनापुर के राज्य सिंहासन के लिए मैंने 64 करोड़ लोगों का वध करा दिया। महाभारत के युद्ध में 64 करोड़ सैनिक मारे गए थे और इसलिए महाराज युधिष्ठिर अपने आप को इसका दोषी मान रहे थे। यह है एक भक्त का स्वभाव। हालांकि सभी जानते हैं कि इस युद्ध के दोषी वो नहीं थे, इसका पूरा पूरा दोषी दुर्योधन था। दुर्योधन की ये मानसिक दशा, ये अहंकार इतना बड़ा वध कराया। हालांकि इस युद्ध को रोकने के लिए बहुत प्रयास किए गए थे। पितामह भीष्म ने समझाया था, विदुर जी ने भी दुर्योधन को समझाया था, लेकिन जो भी इनको समझाने वाले थे, विदुर जी ने जब समझाया तो विदुर जी का बहुत उन्होंने अपमान किया और विदुर जी को वह भवन त्याग करके विदुर जी चले गए। और उसके बाद में अंत में भगवान श्री कृष्ण भी पांडवों के दूत बनकर दुर्योधन को समझाने के लिए गए। ये मैं इसलिए स्पष्ट कर रहा हूं कि कई बाहरी लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि कृष्ण ने ये युद्ध कराया था, कृष्ण ने भाई भाइयों को लड़ाया, लेकिन कृष्ण स्वयं इस युद्ध को रोकने के लिए दुर्योधन के पास गए थे शांति का प्रस्ताव लेकर, शांति दूत बनकर। दुर्योधन को भगवान ने बहुत समझाया। उन्होंने अंत में यहां तक कह दिया कि दुर्योधन पांडवों का इस राज्य में समान अधिकार है, फिर भी भविष्य में तुम्हारे बीच ये घोर युद्ध न हो इसके लिए मैं पांडवों की तरफ से प्रस्ताव रखता हूं कि तुम पूरे पृथ्वी के इस अखंड राज्य में से मात्र 5 गांव पांडवों को दे दो। अब भी बोलिए इससे बड़ा कंप्रोमाइज क्या हो सकता है। पहले भगवान ने कहा कि आधा राज्य दे दो, दुर्योधन ने कहा नहीं दूंगा। भगवान ने कहा ठीक है चौथा भाग दे दो, दुर्योधन ने कहा नहीं दूंगा। अंत में भगवान ने कहा कि ठीक है यार, तुम नहीं दोगे तो युद्ध होना संभव है, तो मैं चाहता हूं कि युद्ध ना हो और 5 गांव दे दो। मेरे को लगता है कि इससे बड़ा कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। पूरे अखंड पृथ्वी के राज्य में से 5 गांव मात्र पांडवों को दे देना, इससे बड़ा क्या कंप्रोमाइज हो सकता है। भाई भाइयों की अरबों की संपत्ति है, खरबों की संपत्ति है, और कोई कहे कि ठीक है तुम अपने भाई को इसका संपत्ति नहीं देना चाहते हो, 5,000 रुपया दे दो, तो बोला 100 अरब की संपत्ति है उसमें से 5,000 भी नहीं दूंगा। तो ये युद्ध का उत्तरदायित्व किसका था, कौन कारण था? और अंत में कृष्ण ये चैलेंज किया दुर्योधन ने कि कृष्णा अगर पांडव क्षत्रिय हैं तो हमसे युद्ध करके ले लें, भीख क्यों मांग रहे हो? तो कृष्ण ने कहा कि युद्ध हुआ तो बहुत बड़ा विनाश होगा। तो दुर्योधन ने कहा बिना युद्ध के सुई रखने जितनी जगह भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा। लेकिन तो युद्ध का कारण कौन था? फिर महाराज युधिष्ठिर क्यों शोक कर रहे हैं? ये बहुत बड़ी शिक्षा है। जो भगवान के भक्त होते हैं वे कभी भी किसी वस्तु का दोषों पर नहीं डालते, वे अपने को ही दोषी समझते हैं कि नहीं इसमें मेरा दोष है, जबकि युधिष्ठिर महाराज का कोई दोष नहीं था। हैं? एक बहुत बड़ा घटना है, रामानुजाचार्य, आपने नाम सुना, बहुत सुनने जैसा घटना है, भक्तों को इस पर गौर करने जैसा। रामानुजाचार्य जब रंगनाथ जी के मंदिर में राजा ने उनको बुलाया तो वे वहां रहने लगे। रामानुजाचार्य बहुत महान आचार्य थे, श्री संप्रदाय के आचार्य हैं। तो जब रामानुजाचार्य रंगनाथ जी के मंदिर में आकर रहने लगे तो रंगनाथ जी का जो पुजारी था उसका मान सम्मान कम होने लगा। जो दक्षिण भारत में पुजारी होते हैं उनका सम्मान बहुत होता है, राजा भी उनको प्रणाम करता है, पुजारियों का इतना सम्मान हो रहा है। लेकिन जब रामानुजाचार्य उस मंदिर में आए तो उसके बाद उसका सम्मान कम हो गया। तो उस पुजारी ने सोचा कि हमारा सम्मान कम हो रहा है, इसका कारण ये रामानुजाचार्य है, तो क्या किया जाए? तो उसने सोचा कि प्रातः सबसे पहले चरणामृत रामानुजाचार्य को दिया जाता है, तो उस चरणामृत में उस पुजारी ने विष मिला दिया रामानुजाचार्य को मारने के लिए। और अब वो विष मिलाकर रामानुजाचार्य को वो विषायुक्त चरणामृत देने लगा। तो रामानुजाचार्य के हाथ में जब वो चरणामृत आया तो वो सोचने लगे, उनको पता चल गया कि इसमें विष है। तो उन्होंने विचार किया कि ऐसा मेरे में क्या दोष है कि ये पुजारी जी मेरे को मारना चाहते। ये रामानुजाचार्य सोच रहे हैं, मेरे में ऐसा क्या दोष है, जबकि दिखता है कि उनमें कोई दोष नहीं है। ये भक्त का स्वभाव ऐसा होता है, हैं? कि वो दूसरों में दोष नहीं देखता है, पहले अपने में। हैं? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, दिल टटोला अपना तो मुझसे बुरा न कोई। लेकिन ये भक्त कह सकता है, अभक्त होता है ये नहीं, ये तो विचार करता है उसका ही दोष है। जो अभक्त होते हैं वे दूसरों का ही दोष निकालते हैं, लेकिन जो भक्त होता है वो अपने भीतर झांकता है। और भी ऐसी एक घटना है, दुर्योधन और युधिष्ठिर की, आप जानते होंगे। उसमें भी महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे से दोषी व्यक्ति कोई और कोई नहीं। तो इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर शोक कर रहे थे कि ये जो युद्ध हुआ इसका दोषी मैं हूं, और इस प्रकार शोक में डूबे हुए थे। तो पहले व्यासदेव जी ने उनको समझाया, वो नहीं माने। अंत में भगवान श्री कृष्ण भी समझाने लगे, लेकिन फिर भी वो नहीं माने। जब कृष्ण के समझाने पर नहीं माने तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कृष्ण अद्भुत कर्मणा, ये कृष्ण जो अद्भुत कर्म करने वाले हैं और इनके द्वारा भी समझाए जाने पर नहीं समझे, तो ये अद्भुत कर्म करने वाले का ये भी एक अद्भुत कर्म है। कृष्ण अद्भुत कर्मणा, क्या अद्भुत कर्म था? कि कृष्ण चाहते थे कि ये वेदव्यास महाराज से भी न समझें और हमारे समझाए जाने पर भी न समझें। तो परमात्मा रूप में अंदर थे तो अंदर से नहीं समझने दे रहे थे और बाहर से समझा रहे थे, ये कृष्ण अद्भुत कर्मणा। प्रभुपाद जी उस श्लोक के परपेट में लिखते हैं कि कृष्ण ये चाहते थे कि पितामह भीष्म के द्वारा कुछ धर्म पर उपदेश हो और पितामह भीष्म का कीर्ति और यश बढ़ाना चाहते थे। प्रभुपाद जी ने अंत में ये लिखा कि कृष्ण चाहते थे कि पितामह भीष्म ज्ञान में हमसे भी बढ़कर, कृष्णा ऐसा चाहते थे, ऐसा तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं। और ये बात इस जगत को दिखाना चाहते थे, इसलिए महाराज युधिष्ठिर कृष्ण के समझाए जाने पर नहीं समझ रहे हैं, ताकि वे युधिष्ठिर महाराज को वहां ले जा सकें और महाराज पितामह भीष्म के द्वारा उनको ज्ञान दिया जाए और महाराज युधिष्ठिर समझ जाए, और इससे पितामह भीष्म की कीर्ति चारों तरफ पहले कि पितामह भीष्म कितने ज्ञानी थे। ये पितामह भीष्म के यश में वृद्धि करने के लिए ये कृष्ण की योजना थी, यही है कृष्ण अद्भुत कर्मणा। तो इस योजना के अंतर्गत फिर अंततः भगवान कृष्ण पांडवों को लेकर उस कुरुक्षेत्र के स्थल में गए जहां पितामह भीष्म बाण सैया पर सोए हुए थे। जब इस बात का पता इंटरनेट के द्वारा सब जगह चल गया तो इस पृथ्वी से सभी बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पर आए थे कि पितामह भीष्म भगवत तत्व पर प्रवचन करने वाले हैं, धर्म पर बोलने वाले हैं। इसका पता चलते ही बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां इकट्ठा हुए थे, यहां तक कि पितामह भीष्म के गुरु कहे जाने वाले भगवान परशुराम भी सशिष्य अपने शिष्यों के साथ वहां आए थे। हालांकि उनमें एक बार झगड़ा हो गया था, परशुराम और पितामह भीष्म में युद्ध हुआ था, फिर भी उसको भी भुलाकर हैं प्रवचन सुनने के लिए आए थे। ये सत्संग का महिमा, कृष्ण कथा का महिमा है कि जहां कृष्ण कथा हो रही हो तो ये ध्यान नहीं देना चाहिए ये तो वक्ता नहीं, नहीं मैं यहां नहीं जाऊंगा, ये प्रवचन करने वाला तो हमारा नहीं बनता है उसके साथ, इसलिए मैं उसके प्रवचन में नहीं जाऊंगा, ऐसा कभी विचार नहीं होना चाहिए। जहां कृष्ण कथा श्रवण का अवसर प्राप्त हो तो सारे अपवादों को भुला देना चाहिए और वहां जाना चाहिए। परशुराम जी के साथ युद्ध हुआ था लेकिन फिर भी, और देखिए परशुराम जी के शिष्य हैं फिर भी वो सुनने के लिए आए। सुखदेव गोस्वामी प्रवचन कर रहे हैं तो उनके गुरु के गुरु नारद जी भी वहां आए। तो जो व्यासपीठ पर बैठकर कृष्ण कथा करता है तो उसमें ये भी नहीं देखना चाहिए ये तो हमारे बाद आया हुआ भक्त है, अरे ये तो लाल गोविंद तो बच्चा था जब हम मंदिर में आते थे, आओ हम क्या प्रवचन में उनके प्रवचन में, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। प्रवचन जो वक्ता होता है उसका आयु नहीं देखा जाता है, उसका ज्ञान, उसका भक्ति, उसका वैराग्य ये देखा जाता है। तो यहाँ पर परशुराम जी भी अपने शिष्यों के साथ आए थे और वहां पर भगवान कृष्ण भी जब गए तो भगवान कृष्ण को उपस्थित देखकर, वैसे तो भगवान कृष्ण गए तो भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर ने जब प्रणाम किया तो कृष्ण ने भी पितामह भीष्म को प्रणाम किया। देखिए कृष्ण का शालीनता, पितामह भीष्म जानते हैं कि ये परम ईश्वर हैं लेकिन फिर भी भगवान उनको प्रणाम करते हैं। भगवान का इतना विनम्रता, इतना दैन्य भाव था, कृष्ण इतने दैन्य भाव में रहते थे कि युधिष्ठिर महाराज को अपना बड़ा भाई समझते थे और जब कहीं चलना होता था तो युधिष्ठिर महाराज के पीछे चलते थे, कभी आगे नहीं चलते थे, ये हमारे बड़े भ्राता। आजकल तो कोई व्यक्ति अगर कुछ बड़ा हो जाता है तो अरे ये क्या आगे चलता है। तो इस प्रकार जब भगवान कृष्ण और पांचों पांडव वहां उपस्थित हुए तो पितामह भीष्म ने भी उनका स्वागत किया। अब बाण सैया पर सोए सोए कैसे स्वागत कर सकते हैं, लेकिन पितामह भीष्म ने बाण सैया पर सोए सोए भी उनको नमस्कार किया, उनका स्वागत किया और उनके स्वागत में बहुत सुंदर उद्गार किए कि आज जो मेरी स्थिति है कि मैं बाण सैया पर सोया हुआ हूं, ना तो मैं बैठ सकता हूं ना उठ सकता हूं और न ही मैं चल सकता हूं, ऐसी मेरी स्थिति, विकट स्थिति है। लेकिन इस समय भगवान श्री कृष्ण मेरे हित के लिए यहां पर मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं, तो इसका कारण नहीं मैं बहुत बड़ा भक्त हूं इसलिए ये आए हैं। देखिए यहां भी दैन्य भाव कितना, हालांकि पितामह भीष्म महाभागवत हैं, कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, महाजन हैं, लेकिन वे सोच रहे हैं कि मैं इतना बड़ा, मेरे कारण नहीं, मैं इनका कहां भक्त हूं, मैं तो इनके विरुद्ध लड़ा हूं। अगर मैं भक्त होता तो इनके विरुद्ध लड़ता। देखिए ये भक्तों का स्वभाव, जो उच्च कोटि के भक्त होते हैं या भक्त होता है वो सोचता है कि मेरे में भक्ति नहीं है, और जो अभक्त हैं, जो भक्त नहीं है, उनको आप कीजिए कि माला लीजिए, जप कीजिए माला पर, 24 घंटे हमारा अंदर चलता है, माला पर क्या जप करना है। ये अभक्तों का उद्गार है। और भक्त माला करते हैं 16 माला या 64 माला भी करते हैं, अरे ठीक से माला नहीं होता है, ठीक भगवान में मन नहीं लगा है, तो भगवान के भक्त दैन्य वस्तु। ये भक्ति, जितना जितना भक्ति हमारे में आता है इतना इतना दैन्य व्यक्ति बनता जाता है। जैसे कोई वृक्ष होता है और उस पर जैसे जैसे फल लगते हैं जैसे जैसे वो झुकता जाता है। तो ये है भक्ति का प्रभाव, ज्ञान का प्रभाव। तो पितामह भीष्म कह रहे कि ये हमारे मेरे में कोई भक्ति नहीं है, लेकिन भगवान का ये स्वभाव है कि जो उनके भक्त होते हैं, जैसे पांडव जो हैं, पांचों पांडव, ये भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, ये कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण के प्रेमी हैं। और मैं उनका पूर्वज हूं या वंशज हूं, या हमारे वंशज हैं ये, तो पांडवों के साथ मेरा संबंध होने के कारण कृष्ण मुझको यहां पर दर्शन देने के लिए आए। कहने का अर्थ है कि कृष्ण जो है, जो कृष्ण से प्रेम करता है या कृष्ण का भक्ति करता है, तो भगवान उस भक्त के संबंधियों पर भी कृपा करते हैं। ये भगवान का स्वभाव। अरे जो कृष्ण का भक्ति करता है उसके संबंधियों की बात छोड़िए, कृष्ण अपने भक्तों के कुत्ता भी है तो उस पर भी कृपा करते हैं। ये मेरे भक्त का कुत्ता है, है? चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे श्रीवास शिवानंद सेन, तो शिवानंद सेन का कुत्ता था, वो कुत्ता रखते थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने उस कुत्ते पर भी कृपा की, तो वो जानते थे कि ये हमारे भक्त का कुत्ता है। देखिए भगवान का स्वभाव, भगवान का भक्ति जो करता है वास्तव में वो अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने बंधुओं की सच्ची सेवा वो करता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये परिवार को छोड़कर भक्ति कर रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा है भक्ति, वास्तव में वास्तविक सेवा वही परिवार की करता है, अपने संबंधियों की या अपने पूर्वजों की, जो भगवान की भक्ति करता है। क्योंकि जो भक्ति करता है, सातवें स्कंद में भी हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज जो थे वास्तव में निर्दोष भक्त थे, निष्कपट थे, इनमें कोई दोष नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसे पुत्र के प्रति भी हिरण्यकश्यपु उनको मारने के लिए उद्यत हुआ। वैसे हिरण्यकश्यपु प्रहलाद महाराज से प्रेम करता था। हम देखते हैं कि जब प्रहलाद महाराज को गोद में बिठाया तो उन पर अपने अश्रु लुढ़का रहा था, तो प्रहलाद महाराज से प्रेम था। प्रहलाद महाराज बहुत विनीत थे, बहुत नम्र थे और निर्दोष थे, इसलिए हिरण्यकश्यपु प्रेम करता था। जय श्री श्री राधा गिरधारी जी की जय, जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय, गौर निताय। लेकिन जब उसको पता चला कि मेरा पुत्र विष्णु का भक्त है, तो विष्णु का भक्त है इसलिए वो प्रहलाद महाराज से द्वेष करने लगा और उनको मारने की योजना बनाया। तो इससे बात समझ में आती है कि हिरण्यकश्यपु भगवान विष्णु का कितना द्वेषी था। है? पुत्र को कौन मारता है? पुत्र नालायक भी हो तो उसको कोई मारना नहीं चाहता है, लेकिन हिरण्यकश्यपु विष्णु का इतना द्वेषी था कि प्रहलाद महाराज को इसलिए मारना चाहता था कि वो विष्णु का भक्त है। इसका अर्थ है कि विष्णु का कितना बड़ा द्वेषी ये हिरण्यकश्यपु था। और जब भगवान ने उस हिरण्यकश्यपु का वध किया और भगवान ने प्रहलाद से आग्रह किया कि बस तुम मांगो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, तो प्रहलाद महाराज ने सर्वप्रथम भगवान से यही विनती किया कि हमारे पिताजी आपके बहुत बड़े द्वेषी थे, आप इनको क्षमा करके इन पर कृपा कीजिए। तो भगवान ने कहा कि प्रहलाद तुम्हारे इस एक पिता की क्या बात है, जो भी जिस कुल में हमारा एक भी भक्त हो जाए तो मैं उसके 21 कुलों का उद्धार कर देता हूं। तो वास्तव में परिवार की या पूर्वजों की सच्ची सेवा कौन किया? हिरण्यकश्यपु जैसे द्वेषी का भी भगवान कहते मैं उद्धार कर दूंगा, तुम चिंता मत करो, इसका क्या तुम्हारी 21 पीढ़ियों की, तुम्हारी मातृकुल की 7 पीढ़ी, तुम्हारी वर्तमान 7 पीढ़ी और तुम्हारे इसके पहले की 7 पीढ़ी, ऐसे कई भक्तों का अलग अलग व्याख्या है। तो इस प्रकार 21 पीढ़ियों का मैं उद्धार कर दूँ, क्यों? क्योंकि तुम्हारे वे संबंधी मेरे भक्त के संबंधी। इससे भी एक आश्चर्यजनक हमारे एक आचार्य बताते हैं बलि महाराज के प्रसंग में, बड़ा आश्चर्यजनक चक्रवर्ती पाद ने एक तात्पर्य लिखा। जब बलि महाराज को भगवान ने कहा कि तीसरा कदम कहां रखो, दो कदम में समाप्त हो गया तुम्हारा संपत्ति, अब तीसरा कदम देने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है, अब जाओ तुमको नरक में जाना पड़ेगा, वहां निरय निरय निलय शब्द आया। तो ऐसा संस्कृत में है, यह और ज में कोई भेद नहीं होता है, तो निलय का अर्थ नरक होता है, नील ज का अर्थ स्वर्ग होता है, वैकुंठ होता है। तो जब भगवान ने कहा कि अब तुम झूठे साबित हो रहे हो, तुमको नरक में जाना पड़ेगा, किसी को वचन दिया और दे नहीं पाए, झूठे हो तो तुम नरक में जाओ, अगर मेरी बात पे तुमको विश्वास नहीं तो जाओ अपने गुरु के पास, उनसे सलाह लो, वो भी कहे थे कि दो कदम में सब कुछ ले लेंगे और तीसरा कदम देने के लिए तुम्हारे पास नहीं होगा, तुम झूठे साबित हो गए, लेकिन तुमने उनका बात भी नहीं माना, जाओ अगर मेरी बात झूठ है तो तुम अपने गुरु के पास जाओ, उनको उनका भी मत ले लो साथ में। तो उसके तात्पर्य में चक्रवर्ती पाद लिखे हैं कि बलि महाराज को भगवान कैसे कह सकते हैं कि जाओ नरक में, ऐसा कैसे हो सकता है, उन्होंने सब कुछ दे दिया था। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ यह है कि बलि महाराज को कहते हैं कि तुम्हारे गुरु के मना करने पर भी तुमने सर्वस्व हमको अर्पण कर दिया, अब तुम बैकुंठ के अधिकारी बन गए, अब तुम बैकुंठ में जाओ और जाओ अपने गुरु के पास, उनको भी साथ में ले लो। अरे बड़ा आश्चर्य का बात है, ताली कैसे बजती, गुरु को कैसे साथ, गुरु तो मना कर रहा था कि विष्णु को नहीं देना है, ये विष्णु है इसको नहीं देना है, तो वो विष्णु के विरुद्ध बात कर रहा था, तो उसको कैसे भगवान कह रहे कि उनको साथ में ले लो। लेकिन इसका तात्पर्य यह है कि चूंकि शुक्राचार्य भी हमारे भक्त का हित चाहते थे, शुक्राचार्य वास्तव में हित चाहते थे कि बलि तीन कदम तुम दे नहीं पाओगे, दो कदम में ये ले लेंगे और तीसरा कदम के लिए तुमको झूठा साबित होना पड़ेगा, तो जब उस समय तुम झूठा साबित होगे तो अभी थोड़ा झूठ बोल दो उनके, नहीं इतना तो मैं नहीं दूंगा, तुम झूठा तो साबित होगे तो सब कुछ बचा कर झूठा साबित हो जाओ, सब कुछ खोकर क्यों झूठा साबित हो रहे हो, एक बात था। और दूसरा उनका मत था कि तुम सब कुछ बलि महाराज को दे दोगे तो प्रसिद्ध हो जाओगे कि ओ वो तो बहुत बड़ा दानी है, बलिदान है, एक शब्द बिल्कुल बन गया, बलिदान, बलि का जो दान है वो बहुत बड़ा है, तो कल कोई दूसरा व्यक्ति आएगा कि चलो बलि महाराज के पास जाने, तो तुम तो सब कुछ दे दोगे, ये सब कुछ ले लेंगे, फिर उसको क्या दोगे, तो तुम्हारा यश कैसे रहेगा। और तो इस प्रकार जो शुक्राचार्य चाहते थे कि हमारे जो शिष्य है उसका यश बना रहे और वो बहुत बड़ा झूठा साबित ना हो, उसका संपत्ति बचा रहे, ऐसे सब कुछ नहीं लुटा देना चाहिए, लुटाना भी है दान भी देना है, भगवान का मंदिर बन रहा है देना है तो सब कुछ नहीं देना चाहिए, ठीक है ना, कौन देता है सब कुछ, कोई बात नहीं सब कुछ नहीं दे तो कोई बात नहीं, लेकिन शुक्राचार्य के अनुसार पांचवा हिस्सा संपत्ति का देना चाहिए, ये तो शुक्राचार्य भी कहते हैं बलि महाराज, समझिए आपके पास 1,00,000 रुपया है तो कम से कम 20,000 रुपया तो देना चाहिए, इतना भी आप दे देंगे तो काफी है, रामनवमी को हो जाएगा उद्घाटन, लेकिन इतना भी नहीं दे रहे हैं हम तो, है 1% भी नहीं दे रहे। तो शुक्राचार्य जी ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं या किसी अन्य आचार्य का मत है, मैं सुना एक भक्त के, वो चाहते हैं भगवान ये बताना चाहते हैं कि शुक्राचार्य भी हमारे भक्त का हित करना चाहते थे, हमारे भक्त की संपत्ति को रखना चाहते, किसी ऐरे गहरे की नहीं, कोई भोगी व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति का कोई गुरु संपत्ति रख देता तो ठीक है कि वो तो ठीक नहीं है, लेकिन वो उस संपत्ति की रक्षा करना चाहते हैं जो हमारे भक्त की है, तो हमारे भक्त की संपत्ति की रक्षा करना चाहते थे इसलिए वो शुक्राचार्य भी जाएंगे वैकुंठ, वो भी वैकुंठ के अधिकारी। कहने का अर्थ है कि भगवान का भक्त के संबंधियों के बारे में जो उनसे थोड़ा भी संबंध रखता है भक्त के साथ, तो उनके प्रति भगवान का कितना लगाव रहता है। तो पितामह भीष्म यही कह रहे हैं कि हमारे में तो कोई भक्ति नहीं है, लेकिन ये पांडव जो आपके अनन्य भक्त, और वास्तव में पांडव अनन्य भक्त थे। अब ये श्लोक पे जाना नहीं, तो पांडवों की भक्ति के बारे में बहुत, पांडव वास्तव में प्रेमी भक्त थे, शुद्ध भक्त थे। शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त और एक साधारण भक्त में थोड़ा डिफरेंस देखते हैं। जैसे शुद्ध भक्त की व्याख्या चैतन्य शिक्षा अष्टकम में अंतिम श्लोक में की गई है, आसी लक्ष्य वा पादरताम पनिष्टु माम अदसनान मर्म हताम करो तू वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो। मतलब तो इसमें ये जो पूरा उद्गार है ये राधा रानी का उद्गार है। तो राधा रानी इस श्लोक में देखिए, राधा रानी की अगर सार निकालेंगे तो राधा रानी की ये भावना है कि वो कृष्ण से कुछ भी नहीं चाहती, कृष्ण कैसे सुखी रहे वो ही चाहती है, कृष्ण से कुछ नहीं चाहती है। इसको शुद्ध भक्ति कहते हैं या इसको प्रेम भक्ति कहते हैं। प्रेम भक्ति का अर्थ है कि जिससे हम प्रेम करते हैं उसको सुखी करना चाहते हैं, इसको प्रेम कहा जाता है। और जिससे हम प्रेम करते हैं उससे कुछ हम भी सुख लेना चाहते हैं, तो ये शुद्ध भक्ति या शुद्ध प्रेम नहीं, ये शुद्ध प्रेम नहीं। राधा रानी या गोपियां कृष्ण को ही सुख देना चाहती, वो अपने लिए सुख नहीं चाहती। या देखिए एक और रामायण में प्रसंग आता है कि जब भगवान राम को वनवास हुआ तो सीता जी साथ में जाने के लिए आग्रह कर रही थी, तो राम ने कहा कि हे देवी, तुम महल में पली हो, राजमहल में बड़ी हुई हो, तुम वन में कैसे रहोगी, वहां कांटे हैं, नीचे सोना पड़ेगा, ये तुमको दुख मिलेगा वहां। तो सीता जी ने कहा कि प्रभु, आपके साथ रहकर मैं आपकी सेवा करके आपको सुखी करूंगी, उसमें मेरा सुख, आपके बिना मैं यहां राजमहल में रहूंगी, पलंग पर सोऊंगी तो वो भी मुझको अंगार जैसा लगेगा, और आपके साथ रहूंगी, आपकी सेवा करूंगी, आपको सुख दूंगी तो मैं कांटों पे भी सोकर मुझको वो स्थिति फूलों जैसी महसूस होगी। तो सीता जी का कहने का भाव है कि आपका सुख है वो मेरा सुख है, आपसे सुख नहीं। यहां पर हम लोग क्या देखते हैं पत्नियों में या जो प्रेम करते हैं वहां देखते हैं कि उनसे सुख मिलेगा, उसको प्रेम कहते हैं, इसलिए वो प्रेम नहीं है, इसलिए उसको लस्ट कहा गया है। प्रेम उसको कहा जाता है कि जिससे आप प्रेम करते हैं उसको सुखी देखना है, उसको सुख देना चाहते हैं। अब इस संसार में जो प्रेम करते हैं कौन है, जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं यथा तथा वा विदधातु लंपटो। समझो कोई लड़की कहती है लड़के से कि आई लव यू, और उस लड़की को पता चले कि ये लड़का और किसी से भी प्रेम करता है तो जूते मारेगी, और पत्नी को पता चल जाए कि हमारा पति का तो संबंध और जगह है, डिवोर्स होगा कि नहीं, कोई पत्नी सोचेगी कि नहीं हमारे पति अगर उससे सुखी है तो ठीक है, नहीं ये हमारे सुख में डिवोर्स मतलब बंटवारा हो रहा है, ये नहीं चलेगा, तलाक। तो ये प्रेम नहीं है, इसको प्रेम नहीं कहा गया, इसलिए प्रेम नहीं, प्रेम की व्याख्या हम नहीं जानते। तो पांडव भी ऐसे ही प्रेमी थे भगवान के, पांडव जो थे आप देखिए पांडवों के पूरे जीवन काल में, पांडवों के जीवन में बहुत कष्ट आए, बहुत दुख आया, और दुख भी आया और कृष्ण उनके साथ थे, हमेशा साथ में थे। कृष्ण पांडवों के साथ इतना रहते थे जितना अपनी पत्नियों के साथ नहीं रहते थे, तो हमेशा पांडवों के साथ रहते थे और दुख उनके जीवन में आता था, एक गया दूसरा आया, दूसरा गया, ऐसे दुख आता रहता, लेकिन पांडवों ने कृष्ण से कभी नहीं कहा कि आप हमारे साथ हैं और हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं, आप कुछ करते नहीं, कहीं भी ऐसा नहीं है। तो दुख के लिए शिकायत नहीं किया, नहीं किया, लेकिन ऐसा भी नहीं सोचा कि हम कृष्ण का माला करते हैं, जप करते हैं और हमारे लिए ये क्या कष्ट आ रहा, बिजनेस ठप हो गया, ये हो गया, वो लोग हो गए, ऐसा भाई से झगड़ा हो। तो पांडवों ने कभी ऐसा भी नहीं सोचा कि कृष्ण हमारे साथ हैं और फिर भी हमारे जीवन में दुख आ रही है, कृष्ण कुछ नहीं करते। हम लोग तो हैं कि किसी ने भक्त ने कहा कि माला करो, मंदिर आओ, मंदिर आए और समझो कुछ गड़बड़ हो गया घर में, तो मंदिर क्या क्या जाना है, मंदिर क्या, भगवान का भक्ति करना है क्या, भगवान को डोनेशन देना है, हमने इतना किया और हमारे तो जीवन में कष्ट आया, छोड़ो कृष्ण का माला और सब जाना आना, मंदिर आना बंद, जप करना बंद, सेवा पूजा बंद। लेकिन पांडवों ने कभी कृष्ण से शिकायत नहीं किया, नहीं किया, लेकिन कृष्ण के प्रति उनका प्रेम भी कम नहीं हुआ। वो दुख आने के बाद भी जितना कृष्ण से प्रेम करते थे करते थे, ये शुद्ध बात है। तो ऐसा भीष्म कहते हैं कि ये जो पांडव हैं ये वास्तव में आपके प्रेमी भक्त हैं और मैं उनका संबंधी हूं, इसलिए ये दर्शन देने के, इसलिए मेरे पर कृपा करने आए हैं कि मैं अब शरीर छोड़ने वाला हूं और मुझको दर्शन देने के लिए इसलिए आए हैं, भगवान का ये स्वभाव। तो इस प्रकार पितामह भीष्म उद्गार करने के बाद अब शरीर छोड़ने के लिए उतावले, अब शरीर छोड़ना चाहते हैं, उतावले में अब शरीर छोड़ना चाहते हैं, ये का बहुत सुंदर अवसर है। तो शरीर छोड़ने चाहते हैं उसके पहले ये उद्गार हैं, हैं? तो आइए अब थोड़ा सा इस श्लोक पर कि सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम, सदैव देवो भगवान उपस्थित हुए हैं। तो एक इस पहली लाइन में ऐसा लगता है कि जैसे पितामह भीष्म भगवान को आदेश दे रहे हैं, जैसे अर्जुन ने आदेश दिया था, हाँ मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करो, भगवान को आदेश दिया। अब इसी प्रकार पितामह भीष्म भी कृष्ण को आदेश दे रहे हैं, इससे पता चलता है कि पितामह भीष्म भी कृष्ण के प्रेमी भक्त हैं। कौन कृष्ण को आदेश दे सकता है, कौन आदेश दे सकता है, लेकिन आदेश क्या आदेश दे रहे हैं कि सदेव देवो, स मतलब वे भगवान, देखिए देव एक एक वचन में है और देवो बहुवचन में है, देवो बहु देवो और देव एक वचन में है, मतलब भगवान, वे भगवान जिनके सभी देवता, देवो जितने भी देवता हैं उनके भी पूज्य, उनके द्वारा पूज्य भगवान, सदेव देवो, जितने भी देवी देवता हैं उनके द्वारा भी पूज्य या उनके भी आराध्य, कौन, कृष्ण, सदेव देवो, देव ये शब्द और इसी अध्याय में आगे भी आया है, हैं उत्तरा के जब उद्गार हैं, हाँ पाही पाही महायोगिना देव देव जगतपते, देव देव जगतपते, वहां देवताओं के भी देवता, वास्तव में सभी देव कृष्ण का आराधना करते हैं, सब सभी देवताओं द्वारा कृष्ण पूज्य हैं। अब समय के अभाव में हम किस किस का नाम, एक दो में, जैसे सभी देवताओं में महान देव हैं महादेव, ठीक है, इसलिए उनका नाम महादेव है कि जितने भी देवी देवता उसमें सबसे महान है महादेव। अब महादेव देखिए भगवान के चरण का प्रक्षालन जल अपने मस्तक पर धारण करते हैं, ये पूजा है। तत्पादसोचम जनकल्मशापहम, तत्पादसोचम भगवान के चरणों का जो प्रक्षालन जल है वो शिवजी अपने मस्तक में, मैंने इसकी दो चार बार व्याख्या की है, हैं? और किस प्रकार धारण करते हैं, दधार मूर्धना प्रयाच भक्त्या, परम आदर प्रेम और भक्ति के साथ कि ये हमारे प्रभु के चरण का प्रक्षालन जल है, उसको शिव जी ने अपने मस्तक पर धारण किया। अब देखिए, अभी दूसरे देवताओं के क्या बात करना है कि नहीं, भगवान उनके द्वारा पूज्य। और ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी ने तो जो चरण देखा कि भगवान के चरण का जल छू रहा है, जब कारणव समुद्र वो ये ब्रह्मांड का पड़ फट गया और भगवान के चरण जो थे केसर युक्त थे और उसमें से जल टपकने लगा, जब टपकने लगा तो वो केसर से युक्त जल गिरने लगा। ब्रह्मा जी का लोक भी ऊपर टॉप लोक सत्य लोक है और वह के निकट ही वो पड़ है और उससे जल गिरने लगा, तो ब्रह्मा जी समझ, ओ ये तो हमारे प्रभु के चरण का जल है। तुरंत कमंडलू, कमंडलू में भर दिया और भरकर आज तक वो रखते हैं कमंडलों में। क्यों? रोज अपने मस्तक पर चाटते हैं रोज। ब्रह्मा जी और शिव जी सदेव देव, ब्रह्मा और शिव तक भी उनकी आरा पूजा करते हैं। फिर दूसरे देवी देवताओं का, देवी का भी लीजिए। अभी आप भागवतम जो प्रातःकाल चलता है तो उसमें कृष्ण बुलाते हैं देवी को, गच्छम देवी वज्रम भद्रे, तो देवी जी कहती हाँ ओ हाँ मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं। ओम के ओम इति, ओम का अर्थ होता है कि आपका जो आदेश है वो वेदिक, ओम वेदिक शब्द है, ओम वेद है, तो आपकी आज्ञा है वो वेदों की आज्ञा है। ओम मैं धारण करूंगी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी, हाँ मैं जाऊंगी। तो ये मैं बड़े बड़े देवताओं का नाम, छोटे छोटे देवताओं को तो छोड़िए, जब लीडरों का बात आ जाता है तो फिर समझ जाना चाहिए सभी। कुछ लोग समझ रहे हैं नहीं नहीं जिसका हम पूजा करते हैं वो शायद नहीं करता होगा, ये ख्याल भ्रम छोड़ दीजिए। हाँ, शिव जी का, ब्रह्मा जी का, देवी का, तो इस प्रकार सदेव वे भगवान जो बड़े बड़े देवताओं द्वारा भी पूज्य हैं, वे भगवान, वे षड ऐश्वर्य से परिपूर्ण प्रभु हमारी प्रतीक्षा करें, प्रतीक्षा करें, वेट करें, प्रतीक्षा करें। क्या प्रतीक्षा करना है, कब तक प्रतीक्षा करना है, भाई क्या आदेश है? तो कहते हैं कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम्। कलेवरम शरीर को, जब तक यावत इदम का अर्थ है कि जब तक मैं इस शरीर को त्याग नहीं देता, हिनोम्यहम्, हिनोम्यहम्, हिनो मैं छोड़ूंगा अह मैं, जब तक मैं इस शरीर को त्याग नहीं देता तब तक भगवान यहां पर खड़े रहें, वेट करें। श्रीधर स्वामी लिखते हैं यावद इदम, तो यहां पर लगता है कि अभी तुरंत नहीं छोड़ना चाहते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा देर और टाइम क्यों लगाना चाहते हैं? क्योंकि भगवान, उनके जो आराध्य देव है जिनका ये ध्यान करते थे, वे भगवान साक्षात उनके समक्ष बहुत ही सौंदर्य सजे धजे खड़े हैं, सजे प्रसन्नहा सा अरुण लोचनो उल्लस, बिल्कुल सजे धजे उनके जो नेत्र हैं वे अरुण, अरुण सूर्य को कहते हैं अरुण, और सूर्य प्रातःकालीन का सूर्य होता है उसको विशेषकर अरुण कहा जाता है। अरुण सूर्यदेव के सारथी भी हैं, सूर्यदेव के सारथी हैं, वे कौन हैं? अरुण, और वे गरुड़ के भाई विनीता के पुत्र हैं, और इन अरुण का ही पुत्र जटायु है, ये भगवान राम के भक्त हैं ये। तो अरुण सूर्यदेव को कहा जाता है, और जो प्रातःकालीन का सूर्य होता है बहुत तेजस्वी होता है और बहुत सुंदर होता है, इसका तेज बहुत होता है। तो प्रातः काल के जो सूर्य उदय होते हैं उस समान तेज वाले हैं, या उस सूर्य के तेज के समान नेत्र वाले भगवान जो हैं हमारे समक्ष खड़े हैं। और ये भगवान खड़े हैं तो मैं अब उनको जी भर के देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं देखना चाहता हूँ। कब तक देखना चाहता हूँ? जब तक मैं शरीर नहीं छोड़ देता। तो शरीर छोड़ने में देर लगाना चाहते हैं कि भगवान हमारे सामने खड़े हैं प्रत्यक्ष, और उनका मैं दर्शन कर रहा हूं, तो मैं दर्शन करना चाहता हूं। क्यों दर्शन करना चाहते हैं? आप तो भक्त हैं, शरीर छोड़कर सीधे वैकुंठ जाने वाले, वहां मिल लेना ना। लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं कि जो भक्त होता है वो दैन्य भाव में रहता है, वो सोचता है हमारे में कोई भक्ति नहीं है, ऐसा नहीं कि हम शरीर छोड़ के वैकुंठ चले जाएंगे, नहीं नहीं मैं तो बहुत बड़ा पापी हूं। तो पितामह भीष्म सोच रहे हैं कि ये शरीर छोड़ने के बाद दूसरा जन्म अगर मिला और दूसरा जन्म में हो सकता है कि हमको ईश्वर साक्षात भगवान का दर्शन मिले या ना मिले, दूसरा जन्म होगा तो दूसरा जन्म में इस प्रकार सामने भगवान खड़े हैं ऐसा दर्शन मिले या ना मिले। अब मिल रहा है तो मैं इसको भर के देखना चाहता हूं, पूर्ण सजे धजे भगवान को इन आंखों से जी भर के देखना चाहता हूं। तो जब तक मैं देख रहा हूं तब तक प्रभु आप प्रतीक्षा कीजिए। तो हो सकता है कि आप क्या मालूम कब शरीर छूटे, शरीर छूटने का कोई भरोसा होता है, कोई बता सकता है डेट या टाइम है कब तक आप खड़ा रखोगे भगवान? तो कि विनो म्यहम, ये शरीर छोड़ना मेरे हाथ में है। पितामह भीष्म विनो म्यहम, विनो मतलब मैं, हिनो म्यहम मैं इसको त्यागूंगा, अहम मैं त्यागूंगा, ये पितामह भीष्म मैं मतलब आत्मा मैं। जनरली क्या होता है, आत्मा शरीर को नहीं छोड़ना चाहता, शरीर ढीला पड़ जाता आत्मा छूट जाता, आत्मा मतलब हम लोग थोड़ा शरीर को छोड़ना चाहते, हम तो नहीं छोड़ना चाहते, कौन छोड़ना चाहता है? मरदम तक डॉक्टर बुलाओ, ये करो वो करो इलाज, हमारा बेटा तो इलाज नहीं कराता है डॉक्टर के पास, अरे क्या करना है? और छोड़ना नहीं है शरीर को, शरीर को कोई नहीं छोड़ना चाहता है, लेकिन ये भक्त होते हैं वो ही ये काम कर सकते हैं। जब और पितामह भीष्म को तो विशेष सुविधा प्राप्त थी, उनके पिताजी शांतनु से ये वरदान प्राप्त था, इच्छा मृत्यु का वरदान। तो प्रभु आप खड़े रहिए, मैं इस शरीर को त्याग दूंगा, ये मेरे हाथ में, लेकिन अब आप खड़े हैं तो मैं जी भर कर देख लूं और उसके बाद जब मैं इस शरीर को छोड़ दूं तब तक आप खड़े रहे, मैं इस शरीर का त्याग करूंगा। भक्तों में, कई भक्तों में ये देखा जाता है, जैसे दधीची के सामने भी जब यह स्थिति उपस्थित हुई तो उन्होंने भी शरीर छोड़ा था अपनी इच्छा से, हालांकि भले उनको कोई वरदान प्राप्त नहीं है, लेकिन भक्त को ये सुविधा प्राप्त होती है, हैं? कि जो उच्च कोटि के भक्त हैं तो वे इस प्रकार, जैसे हरिदास ठाकुर ने भी अपनी इच्छा से शरीर छोड़ा था। हरिदास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि प्रभु अब मैं देख रहा हूं कि आप अपनी लीला को अप्रकट करने वाले हैं, तो आप जब प्रकट हो जाएंगे तो आपके वियोग में मैं यहां नहीं रह पाऊंगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके पहले मैं चला जाऊं। कितनी कितनी भक्ति, ये जिस वैष्णव संप्रदाय में है वहां के आचार्यों के ये उद्गार कितने ऊंच कोटि के हैं। मरना कौन चाहता है, किसी समझाइए, मरना का कौन बात करता है, लेकिन ये मरना चाहते हैं, मतलब ये भगवान से उनका कितना प्रेम है कि भगवान चैतन्य देव चले जाएंगे तो उनके वियोग में मैं यहां कैसे रह पाऊंगा, हम तो बड़ा आनंद से रहते हैं, उल्टा भगवान के पास जाना है तो लगता है कि आज टेंशन आ गया, मंदिर में ये प्रोग्राम रखा है कहां यार, आज तो ये काम था। तो लेकिन हरिदास ठाकुर ने कहा आप जाने वाले तो आपके वियोग में मैं नहीं, पहले से ही वियोग का संभावना करके दुखी हो रहे, और बोले मेरे को एक वरदान दीजिए कि आपकी उपस्थिति में मैं ये शरीर, इतना मेरे पर कृपा कीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु विशेष कृपा करने के लिए वहां उपस्थित हुए, चैतन्य महाप्रभु बैठे थे ऊपर आसन पर, हरिदास ठाकुर नीचे सोए थे और चरण जो थे उन्होंने अपने वक्ष स्थल पर रख दिए चैतन्य महाप्रभु के चरणों को, और दृष्टि उनके मुख कमल पर टिका दी और मुख से गौरचंद्र ऐसा बोलते हुए शरीर को त्याग कर, ये इतिहास में दो ऐसे प्रसंग मिलते हैं जो समन्वय है उनका। जैसे पितामह भीष्म ने देह का त्याग किया, जब चैतन्य महाप्रभु ने भी ऐसे देह त्याग किया तो सभी वैष्णवों ने पितामह भीष्म का स्मरण हुआ था उस समय कि ओ पितामह भीष्म ने इस प्रकार देह त्याग किया था, आज हरिदास को भी यही सौभाग्य प्राप्त हुआ कि भगवान का दर्शन करते करते इन्होंने शरीर त्याग किया। तो इस प्रकार भक्त भगवान का दर्शन करते करते या भगवान का स्मरण करते करते, हो सकता है ये हमारे समक्ष भगवान नहीं है, तो भगवान का स्मरण करते करते भी शरीर त्यागना उसी कोटि का है। भगवान के नाम स्मरण में या भगवान के लीला स्मरण में और भगवान में कोई भेद नहीं है। तो ये इच्छा रखना चाहिए कि भले हमारे सामने भगवान नहीं, लेकिन भगवान का स्मरण करते करते हम शरीर को त्याग करें। तो इस प्रकार हैं, जब तक मैं शरीर का त्याग नहीं कर देता तब तक आप प्रतीक्षा कीजिए। और अब भगवान के मुख कमल का प्रसन्न, वह मुख कमल जो प्रसन्न चित्त है, प्रसन्न है, और प्रातःकालीन के उदय होते सूर्य के भांति चमक रहा है, और जिनके आँख जिनके नयन बिल्कुल हर्षोल्लास से विभूषित हैं, जिनके मुखा अम्बुजो जिनका मुख कमल के समान खिला हुआ है, वे ही भगवान मेरे ध्यान के पथ हो, मेरे ध्यान के विषय हो, मेरे ध्यान के ही गामी हो। ये है ध्यान पथच्च, ध्यान पथच्च बहुत सुंदर शब्द है। ध्यान पथच्च का अर्थ है कि जो ध्यान किया जाता है उसके पथ, उसके गंतव्य, उसके विषय भगवान होते हैं, ना कि कोई शून्य या ना कोई लाइट या ना कोई हवा होती है। अब निराकारवादी तो क्या हवा है? निराकारवादी को बोलिए कि कोई वस्तु संसार में निराकार नहीं है, आप क्यों निराकार बोलते हैं? तो बोलते हैं हवा का कहाँ आकार है। तो कहने का निराकार बदला तो हवा का कैसे ध्यान करेंगे भाई? ये हमारी तो समझ में आज बात नहीं आया कि जो निराकार का ध्यान करते हैं तो क्या ध्यान करते हैं। इसलिए भगवान ने 12वें अध्याय में कहा, क्लेशो ही अधिकतर तेसा अव्यक्त आसक्त चेतसा। बहुत क्लेश होता है, कुछ कल्पना करना पड़ता है या ऐसा, या लाइट का ध्यान कर लो तो क्योंकि लाइट का ध्यान में कैसे मन लग जाता है। अब समझो कोई कुछ लोग लाइट का ध्यान करते, लाइट में कैसे ध्यान करेंगे? तो उसको कष्ट होता है, उसको लाइट में ध्यान लगेगा नहीं, कोई ना तो लाइट का कोई मुख कमल है या ना कोई ऐसा सूर्य के जैसा उनका प्रकाश है, तो उसमें ध्यान लगाना है तो लगाओ ध्यान तो कष्ट होगा ही, वो तो देखी थी बात है। उसमें भगवान का दर्शन कर, अब आज प्रातः भगवान का जब दर्शन खुला तो भक्त दौड़े भाव और देखते ही रह गए। जब गुरु पूजा तो भी देखते हैं, अरे क्या सुंदर आज का दर्शन है, क्या है, क्या रस आ रहा है। अगर वो कहा जाए कि हाँ तो उसमें ध्यान लगा तो ये तो बहुत सरल होता है, और फिर ध्यान करते तो आनंद भी मिलता है इसमें, लेकिन निराकार में कैसे ध्यान करेंगे और कैसे उसमें आनंद हो? तो इसलिए क्लेशो ही अधिक करते, उसमें क्लेश है, कोई आनंद नहीं है। लेकिन ध्यान का पथ जो भगवान जब होते हैं, भगवान का ये लावण्य रूप जब होता है तब उसको आनंद मिलता है। तो वो ध्यान का पथ, ध्यान के विषय वास्तव में भगवान है, कोई निराकारवाद ये लाइट ये सब नहीं है। ये सब राधा गोविंद महाराज कहते हैं ये तो सब बकवास है। बकवास, बक मतलब बगुला, वास मतलब वो बैद करता है, वो वास बकवास का अर्थ ये होता है। बक बक बगुला को कहते हैं, वो बगुला बक 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 बोलता है, इसलिए उसको बक कहते हैं। बतक होते हैं, हम बतक कहते हैं, वो इकट्ठा होते हैं तो बक 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 ऐसा बोलते हैं। तो तो आओ बकवास का है, तो बकवास करते हैं। अभी हमारे प्रभु जी एक सोनमल प्रभु बता रहे थे हमको कि हमको एक व्यक्ति आकर बताया कि नहीं नहीं कृष्ण तो सतयुग के भगवान है, अब कलयुग में तो दूसरी किसी देवी का नाम लिया उसका आराधना करो। बकवास है ये सब, उसको पूछना चाहिए कौन सा शास्त्र कहता है कि कृष्ण सतयुग के भगवान है या कलयुग के भगवान है। कृष्ण तो भगवान है, वो कोई युग के क्या है? अगर ऐसा कह सकता है कि कृष्ण तो सतयुग के भगवान है, कलयुग के भगवान तो चैतन्य देव है, तब हम ठीक है, तब ठीक है। ऐसा कह सकते हैं कि भाई कलयुग में सतयुग, कलयुग में कृष्ण का आराधना हम नहीं कर सकते, हाँ चैतन्य महाप्रभु का करो, वे बहुत दयालु हैं, हमारी गलतियों को भी क्षमा करेंगे, हमारी स्थिति बहुत गंभीर है, विकट स्थिति है, कई गलतियां होती हैं, कई बहुत गड़बड़ हो जाता है, तो चैतन्य महाप्रभु तो ये बताता है तो वो ठीक है, वो अच्छा है, लेकिन बकवास करेगा तो दूसरा विषय ये ठीक नहीं है। कैसे लोग इस पर चलते हैं वो ही जाने, हम तो नहीं जानते हैं। तो ध्यान मुखा अम्बुजो, भगवान का मुखा मुख अम्बुज मुख कमल पितामह भीष्म कहते कि हमारा ध्यान का विषय बना रहे। और चतुर्भुजम, इस पर कभी कभी संशय होता है, चतुर्भुजम, इससे ये पता चलता है कि जो पितामह भीष्म थे उनके इष्ट देव भगवान नारायण, वे नारायण के उपासक थे, जो भगवान का चतुर्भुज रूप है। तो उन्होंने जीवन भर उन चतुर्भुज रूप का ध्यान किया है, उनका दर्शन किया है, तो वे अंत में भी चाहते हैं कि वो भगवान उसी रूप में हमको दर्शन दें। हालांकि पितामह भीष्म जानते हैं कि वे नारायण कृष्ण के अंश हैं, हाँ, लेकिन जीवन भर जो उनका ध्यान किया है तो उनकी इच्छा है वही भगवान, वही ये कृष्ण हैं, जिनका जीवन भर हमने इष्ट देव के रूप में चतुर्भुज रूप में जिनका ध्यान किया, जिनका पूजा किया, वे ही भगवान हमारे ध्यान के विषय हो और वे यहाँ तक प्रतीक्षा करें जब तक मैं इस शरीर को त्याग नहीं देता। तो इस प्रकार इस श्लोक को हमने बहुत संक्षिप्त में थोड़ा व्याख्या किया, समय हो चुका है, 2:30 बजे हैं। तो बहुत सुंदर ये पितामह भीष्म के एक महाभागवत के उद्गार और एक यहाँ हम देखते हैं लिविंग ऑफ आर्ट, आर्ट ऑफ लिविंग, यहाँ है डेथ ऑफ लिविंग, नहीं आर्ट ऑफ डेथ, ये आज हमने विपरीत विषय लिया, आर्ट ऑफ जीने की कला, जीने की कला नहीं मरने की कला सीखो। जीने की कला क्या सीख कर क्या करेंगे, कल मर जाएंगे फिर कला क्या काम आएगी। चलो आपने जीने की कला सीखा लेकिन मरना कब है इसका तो कोई डेट नहीं, अगले क्षण मर सकते हैं, तो मरने का कला सीखना चाहिए। अभी जैसे हमको यहां से रेलवे स्टेशन जाना है तो रेलवे स्टेशन जो मार्ग जाता है उस मार्ग को देखना चाहिए, हम देखेंगे ना इधर एक साफ सुथरा मार्ग है, तो साफ सुथरा है लेकिन वो तो हाईवे जाता है, वहां ट्रेन है नहीं, उस रास्ते में जाकर क्या करेंगे। हमको ट्रेन पकड़ता है तो जो रास्ता ट्रेन में जाता है वो रास्ते को पकड़ना चाहिए नहीं। तो हम हमारा गंध हम मरने वाले हैं, तो मरने वाले हैं तो आर्ट ऑफ डेथ को सीखना चाहिए कि मरने की क्या कला है। तो मरने का नाम लेते तो चिंता आ जाती है, तो कहते हैं कि नहीं नहीं मरना चिंता का विषय नहीं, वो चिंतन का विषय है, चिंतन करो कि मरने को हम कैसे सुधार सकते हैं, कैसे हमारे आचार्यों ने महाजनों ने किस प्रकार शरीर का त्याग किया, उस कला को सीखना चाहिए। और वही कला है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, यही है स्मरण, हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ग्रंथाचार्य से अनाउंस आप करेंगे, अभी बाकी का अनाउंस आप कर दीजिए, और भी बात नहीं, लाल गोविंद प्रभु को दो ना।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे।